सुखी स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, इस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए सम्मिलित होने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों सन्नारियों, सभी स्वस्थ सुखी जीवन जीना चाहते हैं, पर हम अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं, इसके मूल कारण को नहीं समझ पाने के कारण सही माने में सुखी जीवन स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते। हमारे देश के महापुरुषों ने इसी बात की खोज की। इसकी खोज करने के कारण ही ये महापुरुष बुद्ध कहलाए, सर्वज्ञ कहलाए। हमारे दुख का मूल कारण कहाँ है? विपश्यना साधना हमें अपने दुखों के मूल कारण तक ले जाती है और उस दुख के मूल कारण के निवारण का तरीका सिखाती है। यही भगवान बुद्ध की सारे मानव जाति को बहुत बड़ी देन थी। रोग का उपचार केवल ऊपर ऊपर से करके रह जाए तो सही माने में स्वस्थ नहीं हुए। हमारे सारे रोगों की जड़ें, और सबसे बड़ा रोग तो भव रोग, जड़ें मन में समाई हुई और मन के भी गहराइयों में, अंतर मन में, जड़ों में समाई हुई, वहां तक पहुंच हुए बिना रोग का निवारण नहीं कर पाए। अंतर मन ने जो अपना स्वभाव बना लिया, प्रतिक्षण अस्वस्थ रहने का ही स्वभाव बना लिया, जब देखो तब रोगी, जब देखो तब रोगी। राग पैदा करता है, रोगी हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। द्वेष पैदा करता है, रोगी हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से से हम राग दूर कर लें, द्वेष दूर कर लें और सारे विकार दूर कर लें तो अच्छी बात है। मानस का कुछ हिस्सा तो स्वस्थ हुआ, पर जड़ों में यदि रोग समाया हुआ है तो बार बार ऊपर से अपने आप को निरोगा बनाते हुए भी हम रोगी ही रहते हैं। रोग को जड़ों से निकालना है, विपश्यना इसमें सहायता करती है। मानस की जड़ों में कैसे रोगी बने रहने का स्वभाव हमने पाल लिया है और उसे बढ़ाए चले जा रहे हैं। मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। मन हमारे शरीर को प्रभावित करते रहता है, शरीर हमारे मन को प्रभावित करते रहता है। मन और शरीर के इस सारे प्रपंच को जिस व्यक्ति ने गहराइयों तक जान लिया, उसने ये भी जान लिया कि मन क्यों रोगी हो जाता है, क्यों विकृत हो जाता है और कैसे इस रोगी रहने के स्वभाव का संवर्धन करते चले जाता है, और यह भी जान लिया कि कैसे इस स्वभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। और ये जानकर ही वो व्यक्ति बुद्ध बना, सम्यक संबुद्ध बना, और ये विद्या बड़े करुण चित्त से लोगों को बांटी। भारत की बहुत पुरातन विद्या अब भारत में फिर आई है, बहुत बड़ा लोक कल्याण होगा। इस चर्चा परिचर्चा में वैद्य इकट्ठे हुए हैं, चिकित्सक इकट्ठे हुए हैं। ये भारत का एक महान पुत्र विश्व का सबसे बड़ा वैद्य हुआ, महाभिषक हुआ, महाचिकित्सक हुआ, महाशल्यकर्ता हुआ, सर्जन हुआ। उन्हीं दिनों भारत का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैद्य था जिसका नाम जीवक था। सारे उत्तर भारत में उसकी बड़ी प्रशस्ति थी, बड़ी प्रशंसा थी। ऐसे असाध्य रोग जिनका कहीं इलाज नहीं होता था, ये वैद्य उनका इलाज कर दिया करता था। ये व्यक्ति भगवान बुद्ध के संपर्क में आया, उनके शिक्षा प्राप्त की, तो देखता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शल्य करता हूँ, अरे मैं तो बौना हूँ, बहुत छोटा हूँ। संसार का सबसे बड़ा शल्य करता, सल्लकत्तो सर्जन, तो ये महापुरुष है। संसार का सबसे बड़ा चिकित्सक, महाभिषक, तो ये महापुरुष है। मैं तो इसके सामने बड़ा बौना हूँ, क्योंकि सारी बात समझ में आ गई। मैं रोग का उपचार केवल ऊपरी ऊपरी सतह पर करता हूँ, और ये जड़ों से ऐसा रोग निकाल देता है जो भव रोग है, जो एक जीवन में ही नहीं अनेक जन्मों से हमारे साथ चला आ रहा है, और न जाने आगे कितने जन्मों तक साथ चलता जाएगा और हमें दुखी ही बनाता चला जाएगा। जड़ें निकाल देता है। ये व्यक्ति श्रद्धा से झुक गया और सारे जीवन भर अपना चिकित्सा का कार्य करता रहा, लेकिन इस महान चिकित्सक से जो विद्या प्राप्त की, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देता रहा। सही इलाज तो यही मिलेगा, इस व्यक्ति के पास मिलेगा। इतना बड़ा शल्य कर्ता, सल्लकत्तो सर्जन, अंतर मन के गहराइयों में जो ग्रंथियां इकट्ठी कर रखी है, न जाने कितने जन्मों से इकट्ठी कर रखी है, रोग ही रोग की ग्रंथियां, राग की ग्रंथियां, द्वेष की ग्रंथियां, मोह की ग्रंथियां, कैसे इन्हें काट फेंकता है ये व्यक्ति। और काट ही नहीं फेंकता है, एक एक व्यक्ति को सिखाता है कि अपनी इन ग्रंथियों की सर्जरी स्वयं करो, ऐसे करो। बस यही विपश्यना है। 10 दिनों तक जो अभ्यास किया, वो तो विपश्यना की एक बहुत धूमिल रूपरेखा सामने आई। बहुत बड़ा काम है, बहुत गहराइयों तक अपने मानस की ग्रंथियों को बाहर निकालने का काम बहुत बड़ा काम होता है। पर कितना ही बड़ा काम क्यों न हो, आरंभ तो हुआ। बहुत लंबी यात्रा है, पर कितनी ही लंबी यात्रा क्यों न हो, यात्रा पर पहला कदम तो उठाया। जिसने कभी लंबी यात्रा का पहला कदम ही नहीं उठाया, उससे आशा नहीं कर सकते कि वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। पहला कदम उठाया तो कदम 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 आगे बढ़ते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मन की गहराइयों तक जाना है, मन की गहराइयों से विकारों को निकालना है, तो रोग निकल जाएंगे, सारे रोग निकल जाएंगे, भव रोग निकल जाएंगे, सारे दुख निकल जाएंगे। जो जो लोग इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं, वो धर्म की गहराइयों को समझ करके केवल अपना ही नहीं, अनेकों के कल्याण का कारण बनेंगे, अनेकों के मंगल का कारण बनेंगे, अनेकों के सुख शांति का कारण बनेंगे, अनेकों के सही स्वास्थ्य का कारण बनेंगे। धर्म को खूब गहराइयों से समझें, सांप्रदायिकता के जंजाल से दूर रखें धर्म को, कर्मकांड के जंजालों से दूर रखें धर्म को, इन दार्शनिक मान्यताओं को, निकम्मी दार्शनिक मान्यताओं को धर्म से दूर रखें, उसका शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप सामने आए। मन और तन का पारस्परिक संबंध किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता हुआ हमारी अज्ञान अवस्था में हमारे भीतर विकार जगाने का कारण बनता है, और किस प्रकार ये अज्ञान दूर करके अनुभूतियों के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूतियों के स्तर पर यह अज्ञान दूर करके हम इन विकारों से छुटकारा पा सकते हैं, सही माने में सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, तन और मन के सारे क्षेत्र का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति ही तन और मन के परे की अवस्था को प्राप्त हो सकता है, वही सही माने में सुखी अवस्था है। निब्बाणं परमं सुखं, और वो अवस्था कल्पनाओं से नहीं प्राप्त होती, चाहने से नहीं प्राप्त होती, प्रार्थनाओं से नहीं प्राप्त होती। तन और मन के सारे क्षेत्र का अनुसंधान करते हुए, अपने मन के रोगों से छुटकारा पाते हुए, विकारों से छुटकारा पाते हुए, चित्त को नितांत निर्मल कर लेने के बाद ही वो परम स्वस्थ अवस्था प्राप्त होती है जो तन और मन के परे है, जो इंद्रियातीत है, जो लोकातीत है, जो भवातीत है। सारी यात्रा उस अवस्था तक पहुंचने के लिए है। हर व्यक्ति जो इस मार्ग पर कदम रखकर चलने लगा है, उस अवस्था तक पहुंचे, अपना मंगल साधे, औरों के मंगल साधने में सहायक हो जाए।
सर्व मा